ओम शांति सीधा होकर बैठेंगे। जब जब एक मिनट भी मिले तो ड्रिल करने हैं, एक्सरसाइज। भ्रिकुटी के बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें, देखें अपने आप को। मैं सत्योगी आत्मा मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। मैं सबको देने वाली आत्मा, मेरे संस्कारों से भारत स्वर्णिम भारत और सृष्टि सत्युग बन रही है। मैं सत्युग की दिव्य आत्मा सोलह कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सत्युगी आत्मा देखिएगा अपने आप को अपने कर्म क्षेत्र पर। बातें आती हैं, लोग भी अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। मैं सत्योगी आत्मा, मेरा कर्म देखे अपने आप को कैसा है। हर एक का कर्म क्षेत्र अलग है, परिवार अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन अपनी अपनी परिस्थिति में मुझे देखना है कि इस परिस्थिति में सत्योगी आत्मा कैसे सोचती है, बोलती है, व्यवहार में आती है। ओम शांति, ओम शांति। ये टेबल है, अगर हर एक को आकर कहा जाए इस मेज को उठाइए तो मेज तो वही है, लेकिन किसी को हल्की और किसी को भारी लगेगी और किसी को तो बहुत भारी लगेगी। तो वो मेज हल्की है या भारी है ये किस पर निर्भर है, मेज पर निर्भर है या उठाने वाले पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? उठाने वाले पर है। लेकिन जिसकी शक्ति कम होगी और उसको उठाने में मुश्किल लगेगा तो वो व्यक्ति ये नहीं कहता मैं कमजोर हूं, कहता है मेज भारी है। और मेज भारी बोलकर अपनी शक्ति बढ़ाने का कुछ प्रयास नहीं करता। इसी तरह काम हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। बच्चे पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। परिवार पहले भी रिश्ते निभाते थे, आज भी निभाते हैं। लेकिन आजकल सबको सब कुछ थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। पहले एक घर में कितने बच्चे थे? हाँ, अपने गिनो भाई बहन और अपने माता पिता के भाई बहन गिनो, कितने थे? हाँ, कौन कौन से स्कूल में जा रहा है, कौन सी क्लास में है, कब पास हुआ, कब क्या बना। सच सोचो, एक ऐसी दुनिया जिसमें फोन भी नहीं था देखने के लिए कि कहाँ पहुंचे, अभी किधर है। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चा इंटरनेट से क्लिक करके पढ़ भी नहीं सकता था। एक ऐसी दुनिया जहां पता भी नहीं था क्या क्या ऑप्शंस हैं, अपने ही दायरे में थे। तो भी वो बच्चे कब पैदा हुए, कब पले, कब बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। आज दो या कई घरों में एक, वो एक बच्चे को पालना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो क्या मुश्किल हुआ है? काम मुश्किल हुआ है, पेरेंटिंग मुश्किल हुई है, रिश्ते डिफिकल्ट हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा बढ़ गई है, मतलब मेज ज्यादा भारी हुई है क्या, या मेज को उठाने वाले? पढ़ाई पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन आज बच्चों का पैनिक अटैक, स्ट्रेस इतना होता है। हम में से कौन कौन स्कूल में था जब स्ट्रेस वर्ड ही नहीं था ना? हम में से मेजोरिटी स्ट्रेस वर्ड ही नहीं था, वो फिजिक्स में था, टेंशन वर्ड बोलते थे, वो भी साल में दो दिन, एक एग्जाम के दिन, एक पहले और एक रिजल्ट के दिन। बाकी पूरा साल तो वो टेंशन वर्ड भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था ये क्या होता है। और इसीलिए उस जमाने में कहा जाता स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, भी कोई टेंशन ही नहीं होती बच्चों को तो स्कूल में। अब धीरे धीरे हम उस युग में आए जब स्कूल के बच्चों ने भी स्ट्रेस बोलना शुरू किया, लेकिन अब हम उस समय में आए हैं जब स्कूल के बच्चे डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या पढ़ाई ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में? पढ़ाई ज्यादा हो चुकी है पिछले कुछ सालों में? पहले एग्जाम कैसे हुआ करते थे, बोर्ड के एग्जाम कैसे होते थे? 5 दिन में सब एग्जाम खत्म। अभी कैसे होते हैं? 1-5 दिन छुट्टी, 1-4 दिन छुट्टी, 1। कौन सा ज्यादा आसान था, पहले वाला या अभी? अभी वाला। लेकिन अनुभव पहले वाला ज्यादा आसान था। हम तो 5 दिन में ही पूरे कर देते थे, मंडे से फ्राइडे खत्म। ना फोन था, ना साधन थे, तो भी 5 दिन में खत्म। तो भी कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी वर्ड नहीं था। अभी तो अच्छा, पहले कॉलेज भी कितने थे, गिन के होते थे, अभी कितने हैं? हर एक शहर में हर प्रोफेशन का कॉलेज है। तो क्या मुश्किल हो गया जिसके लिए इतना डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब वर्ड आ रहा है? इसीलिए आज सिर्फ ये एक चीज यहां फिट करनी है, मेज भारी नहीं है, पढ़ाई मुश्किल नहीं हुई है, वर्क लाइफ भी मुश्किल नहीं हुई है पहले से बहुत ज्यादा। आप वो वाला जमाना सोच सकते हैं जहां हर आर्टिकल सिर्फ हाथ से लिखा जाता होगा, टाइप ही नहीं करते होंगे, कितना समय लगता होगा करने के लिए? तो वर्क लाइफ भी पहले से ज्यादा बहुत आसान हुई है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। बाह्य चीजें पिछले कुछ सालों में सिर्फ आसान, आसान और आसान ही हुई है। और ये सोचकर मनुष्य ने इन सबको आसान बनाया कि जब ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी तो मनुष्य का जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन मनुष्य इन सारी आसान चीजों में इतना उलझ गया कि इन सबको निभाने वाली जो शक्ति थी उसका ध्यान नहीं रखा। मतलब हमने क्या किया, पिछले 20 सालों में मेज को हल्का कर दिया, ये सोच के कि अब मेज इतनी हल्की हो गई है तो सबके लिए लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन जितने सालों में हमने मेज हल्की की थी, उतने सालों में उठाने वाले ने अपने आप को कमजोर कर दिया था। तो मेज हल्की हो गई लेकिन उठाने वाले को वो मेज बड़ी भारी लग रही है आजकल। तो पेरेंटिंग मुश्किल लग रही है, रिश्ते निभाना मुश्किल लग रहा है। पहले एक घर में कितने लोग रहते थे इकट्ठे, और घर के साइज कैसे थे, छोटे थे। रसोई में साधन कितने थे, हर चीज अपने हाथ से करनी थी। ऐसे नहीं मशीन दबाई हो गया सब, आज वॉशिंग मशीन, मशीन दबाओ सारे कपड़े धुल गए, तब कैसे धोने थे एक एक। मेज भारी थी, आज मेज कितनी हल्की हो गई। ये क्लिक करो ये काम हो गया, वो क्लिक करो ये काम हो गया, ये क्लिक करो फोन पे बात हो गई, इंतजार नहीं करना बच्चा अभी कहां पहुंचा होगा, एक मैसेज करो एक सेकंड में मन को आंसर मिल गया। मेज कितनी हल्की हो गई, और हमने हर चीज को मुश्किल कहना शुरू कर दिया। काम मुश्किल है, पेरेंटिंग मुश्किल है, रिश्ते मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। सो वी हैव टू कम बैक, मेज नहीं, निभाने वाला जो है उसकी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वर्क को नहीं चेंज करना है, हमें लाइफ को नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को निभाने वाले की शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन सिर्फ एक सेकंड अगर विचार करें, पिछले 20 सालों में ये आत्मा की शक्ति घटी क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों घटी शक्ति, बताइए क्यों घटी शक्ति, क्यों शक्ति घटी। न्यूक्लियर फैमिली तो इसलिए हुई क्योंकि शक्ति घटी। जब शक्ति अच्छी थी तो हम 10 लोगों के साथ भी रह सकते थे, अब फिर हमने कहा इतने लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, फिर हम 10 से 8 में, फिर हमने कहा इतने लोगों के साथ भी नहीं हम रह सकते, फिर हम 5 में, फिर उससे हम और आए, इतने लोगों के साथ नहीं हम रह सकते, हम 4, अब हम कहते इतने भी नहीं रह सकते, हम 2, फिर हम कहते इतने नहीं हम रह सकते, अपने अपने कमरे में लैपटॉप फोन और कईयों के घर में डॉग, हम खुश। क्या हुआ पिछले कुछ सालों में जो शक्ति घटी जी, हाँ वो पेशेंस भी क्यों घटी, वो पेशेंस तो आत्मा की शक्ति घटने से वजह से घटी। भूल गए हम आत्मा है, 20-30 साल पहले भी हम याद नहीं करते थे जब उसको जाते मैं आत्मा हूं, याद नहीं था हमारे को। आत्मा की शक्ति कौन सी चीज से बढ़ती है और आत्मा की शक्ति कौन सी चीज से घटती है, ये जब याद रहेगा तो बातें बाहर नहीं बदलने वाली लेकिन हमारी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आज सुबह हमने देखा आत्मा के साथ कौन सी दो चीजें परमानेंट है, कंपस कौन सा है, कंपस कौन सा है जो पकड़ के रखना है हर निर्णय लेने के लिए, कौन सी दो चीजें हैं जो परमानेंट है आत्मा के लिए, संस्कार और कर्म। जितना संस्कार ही कर्म में आते हैं, जितना जितना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे उतना उतना आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितना जितना हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो देयर इज नो सच थिंग कि वर्क प्रेशर को कैसे संभालना है, कुछ भी नहीं करना है, वर्क तो बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है सारा। इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क को करने वाला अपनी शक्ति को क्या कर ले, बढ़ा ले। 2 दिन हुए हमें यहाँ आए हुए, यहाँ इस कैंपस में 150-200 भाई बहने रहते हैं, देख रहे हैं ना आप, हर जगह आप अकोमोडेशन में जाते हैं वहां है, डाइनिंग में जाते हैं वहां है, यहाँ पर आप सेवा करते हुए देख रहे हैं ये वहां है, ये यहाँ 365 दिन रहते हैं, 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, एक एक कमरे में 4-5 भाई इकट्ठे रहते हैं। जो खाना बनता है रोज सबको वही खाना है, अलग उठा के कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, जो कपड़ा एक को मिलेगा सबको भी सेम ही मिलेगा, सैलरी तो कोई मिलती नहीं है, प्रमोशन कभी होती नहीं है, डेजिग्नेशन कोई है नहीं, और 365 दिन 24 घंटे इकट्ठे रहना है, और फिर भी आप यहां आ रहे हैं और आपको शांति महसूस हो रही है, तो आपको क्या लगता है यहां रहना ज्यादा आसान है या उस घर में रहना ज्यादा आसान है जहां 4 लोग रहते हैं जो कि हमारा परिवार है। यहां तो ये कोई परिवार नहीं है एक दूसरे का, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई पांचवी पास है, कोई MBA PhD है, सब तरह के हैं और सब सडनली एक जगह पर आ गए। 365 दिन सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न, और चाहिए क्या, मिलने भी नहीं वाला है कुछ, पता है उनको कि कुछ मिलने नहीं वाला है, कुछ वो नहीं मिलने वाला जो आंखों से दिखाई देता, कुछ वो नहीं मिलने वाला जिसके लिए दुनिया भाग रही है। इसका मतलब ये नहीं हमें छोड़कर यहां आना है, इसका मतलब सिर्फ ये है हमें ये मॉडल समझना है कि जिस खुशी को हम ढूंढ रहे हैं, जिस शांति और सुकून को हम ढूंढ रहे हैं, वो इनके पास बिना काम किए बिना पैसे कमाए भी आई हुई है। ये 8-10 लोग नहीं, ये 150 लोग रहते हैं इकट्ठे। हम 4 लोग इकट्ठे रहते हैं, उसमें भी हम सुबह बाहर जाते हैं, रात को वापस आते हैं, ये तो इधर कहीं जाना जाना भी नहीं है इनको, ना कोई रविवार है ना दिवाली है, सब दिन एक बराबर। तो भी आपको लग रहा है यहां थोड़ी शांति है, घर से ज्यादा यहां शांति है, तो आपको नहीं लगना यहां से हमें ये मॉडल सीख के जाना है कि अगर 150 लोग रह सकते हैं, अनजान लोग, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम सब एक जैसे हैं, हर एक के संस्कार बहुत अलग अलग हैं, एक एक बोलता है तो दूसरा दूसरा बोलेगा, क्योंकि संस्कार तो अलग अलग ही होंगे, लेकिन फिर भी शांति है, परिवार की फीलिंग आती है, अन्न खा के मन को सुकून मिलता है। तो अगर 150 लोग रह के कर सकते हैं, आपको नहीं लगता हम घर में 4 लोग रह के कर सकते होंगे, कर सकते होंगे या नहीं कर सकते होंगे? आपको यहां इसीलिए बुलाया गया है, ये कॉन्फ्रेंस तो किसी भी शहर में हो सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ थ्योरी बात हो सकती है। यहां आना मतलब ये प्रैक्टिकल प्रूफ देखना कि इतने लोग रह रहे हैं और तो भी ऐसी भाषणा आ रही है, तो हम 4 लोग क्यों नहीं कर सकते अपने घर में, हम 20-50 लोग अपने ऑफिस में क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? तो ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये वातावरण ऐसा है? आपने इनको देखा ये सारा दिन सेवा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं किसी को देखा जो सारा दिन आंख बंद करके चौकड़ी मार के बैठा है मेडिटेशन करने, कोई दिख रहा है आपको ऐसा? दिखा ऐसा? अभी आप वापस जाएंगे मंडे ट्यूसडे तक, इनको एक दिन बीच में वेडनेसडे मिलेगा सिर्फ। वेडनेसडे में सारे डाइनिंग हॉल साफ होंगे, रसोई साफ होगी, सारे कमरे साफ होंगे, सारे बिस्तरे बदलेंगे, थर्सडे से अगला ग्रुप आ जाएगा। दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस करनी हो तो एक एक साल 6-6 महीने पहले प्लान करते हैं, या हर हफ्ते कॉन्फ्रेंस है, हर हफ्ते स्टेशन जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, सेवा करे खाना, फिर भी शांति है। कोई सारा दिन बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, टाइम ही नहीं है। सुबह कितने बजे उठ रहे हैं ये सारे यहां पर? 3:30 बजे गाना बजता है, ये आप वो आजकल तो नहीं बजा ताकि आपकी नींद ना खुले, 3:30 बजे बजा था क्या आज का ना? अच्छा, वेरी गुड। तो 3:30 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे से पहले तो ये जाएंगे नहीं कमरे के अंदर, वो तो डन चीज है। तो ये भी नहीं है कि जीवन बहुत आसान है। लोग कहते हैं वो आश्रम में तो आपको क्या, आश्रम में आपको क्या करना पड़ता है? उनको लगता है आश्रम मतलब खाली खाली बैठो, सारा दिन ऐसे करते रहो, इसलिए शांति है। आश्रम में हमारे घर और काम से ज्यादा सेवा होती है। घर पर हम 5-6 दिन करते हैं, फिर एक छुट्टी तो मिलती है संडे को खाली बैठने के लिए, यहां कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि इनको ये काम बोझ नहीं, इनको ये काम करते हुए भी कैसा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। इसलिए क्योंकि मनोस्थिति काम पर निर्भर नहीं है, मनोस्थिति से काम किया जाता है, काम से मनोस्थिति नहीं बनती है। अगर आप यहां देखेंगे ना, कुछ भाई तो आपको दिखाई देंगे, कुछ तो कितनी कोने कोने में कुछ कुछ कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है तो 25 साल से वो एक कोने में वेल्डिंग कर रहा है, वो कभी किसी से मिले भी नहीं आगे आके, कोई ये स्टेज संभाल रहे हैं तो 25 साल से स्टेज संभाल रहे हैं, कुर्सी रखना है कुर्सी उठाना है, कुर्सी रखना है कुर्सी उठाना है, टेबल रखना, तो भी चेहरे पे ऐसी रौनक है जैसे पता नहीं कौन सा काम करके आया। ये एक प्रूफ होता है कि जो हम सारा दिन ये बोलते हैं ना, ये बनेंगे तो खुशी मिलेगी, ये बनेंगे तो खुशी मिलेगी, ये पालेंगे तो खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी फ्री में क्रिएट होती है। खुश रहकर फिर आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, खुशी के लिए नहीं, खुशी के साथ। लेकिन खुशी कमानी तो पड़ेगी, लेकिन वो नौकरी में और बिजनेस में नहीं मिलेगी, वहां पर धन मिलेगा, धन से सम्मान आएगा, और सम्मान बहुत जरूरी है। लेकिन खुशी भी तो कमानी पड़ेगी ना, ऐसे तो आ ही नहीं सकती, शक्ति तो कमानी पड़ेगी। तो ये सारे जो भाई बहने यहां रहते हैं, या सारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहने जो पूरे विश्व में आज स्कैटर्ड है, चाहे वो सेंटर संभालते हैं वो, चाहे वो घर पर रहते हैं आपकी तरह, काम कारोबार करते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, दिनचर्या दोनों की एक जैसी है, वो आश्रम पे सेवा कर रहे हैं, वो बाहर अपने परिवार और काम कारोबार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दिनचर्या सबकी एक जैसी है, और वो दिनचर्या शक्ति देती है, वो दिनचर्या श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत देती है, वो दिनचर्या श्रेष्ठ कर्म के लिए अकेले खड़े होने की भी ताकत देती है। और वो दिनचर्या में सबसे पहली जो चीज है वो है सुबह अमृत वेले उठना, और अमृत वेले उठकर मेडिटेशन करके आत्मा की बैटरी को क्या करना, चार्ज करना। तो आपने अब ये पॉइंट्स बनाने हैं कि आपने वापस जाके क्या क्या करना है। ऐसे नहीं हो सकता, यहां आए कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत शांति है, वापस गए, फिर अगले साल पूछा हम फिर से कब आएंगे तीन दिन की शांति के लिए। यहां तीन दिन की शांति के लिए नहीं आना है, यहां शांत सदा रहने के लिए सीखने के लिए आना है। कौन कौन आज 4 बजे उठे थे, कल कौन कौन उठेगा, और बुधवार से कौन कौन उठेगा, जो हमारा 3-4 दिन में वाइब्रेशन ऊपर जाता है ना यहां रहने से, उसका रीजन है, एक तो है संग, दूसरा है अन्न, तीसरा है वातावरण, और चौथा है जो ज्ञान की बातें चल रही हैं, और पांचवा है हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो ये वाइब्रेशन आप ऊपर उठा रहे हैं ये परमानेंट ऐसे रहने वाली है जाने के बाद, तो ऐसे रहने वाला नहीं है। वो तो नीचे आबू रोड तक उतरते उतरते भी क्या होना शुरू हो जाएगा, सोचो आपकी ट्रेन है या आपकी फ्लाइट है और पूरा माउंट आबू से आबू रोड तक का रोड ही जाम हो गया, शांत रह लेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे स्टेशन पे तो पता चलेगा 6 घंटे लेट हो गए ट्रेन, फिर गुस्सा भी आ जाएगा, फिर कहेंगे छोड़ वो सब, आश्रम में ठीक था, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब नहीं चलता ऐसे है। और हम वापस अपने वही संस्कारों पर आ जाएंगे। तो ये वाइब्रेशन कोई परमानेंट रहने नहीं वाला है, लेकिन ये वाइब्रेशन को सिर्फ परमानेंट नहीं और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें रोज करनी है, और उसमें से पहली चीज है हर रोज सुबह मेडिटेशन करना। तो फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे कि हम यहां से वापस जाने के बाद, क्योंकि यहां तो हम इतने बड़े संगठन में सीख रहे हैं ना, अपने अपने क्वेश्चंस भी हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर्सनल 1-on-1 भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो यहां से जाने के बाद जिस सेंटर के थ्रू आप आए हैं, जो सेंटर आपके घर के सबसे नजदीक है, आपको पता है हर एक जहां रहता है 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर है, ज्यादा दूर भी जाना नहीं है। तो वहां पर जाकर अपना टाइम फिक्स करके, जो दिन जो टाइम आपको सूट करे, क्योंकि बहने हर एक को, चाहे कोई भी आता है, हर एक को उनके दिन और उनके टाइम पर सिखाते हैं, ये नियम है जो शुरू से चल रहा है इस यज्ञ में। तो वो होता है 7 दिन का राजयोग शिविर, 1 घंटा रोज, जो दिन जो टाइम आपको सूट करता है। कौन कौन कर सकता है वापस जाने के बाद? 7 दिन नहीं होंगे आपके पास तो आप उनको बोलना दीदी आप हमको 5 दिन में करा दो, तो वो 5 दिन में करा देंगे। कौन कौन रेडी ये करने के लिए जाने के बाद? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, एक बार हमने वो राजयोग शिविर सीख लिया तो उसमें दीदी हमें अकेले बैठकर, अकेले मतलब आप और आपका परिवार भी साथ में जा सकता है, हमें बैठकर मेडिटेशन सिखाएंगे, हमारे प्रश्नों के आंसर करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। फिर जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो वो हमें 2 चीजें बताएंगे। फर्स्ट चीज वो बताएंगे आप रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करना। अब आप सबकी दिनचर्या थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड नहीं होती है, कभी आपको रात को बहुत लेट हो रहा है, कभी टाइम पर आ रहे हैं, तो जिस दिन टाइम पर आ गए तो जल्दी उठ जाना सुबह, जिस दिन बहुत लेट हो गया भले जल्दी नहीं उठना, लेकिन जब उठना तब बैठना 10 मिनट। ये कर सकते हैं? जिस दिन तो टाइम पर आ गए तो सुबह के समय को यूज करना चाहिए, जिस दिन लेट हो गया तो आप आराम से उठो जब आपकी नींद पूरी हुई, लेकिन जब उठे बैठना जरूर है। इस मन को डिसिप्लिन करना है, शक्ति रोज बढ़ानी है। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, एक दिन मिस कर सकते हैं, दो दिन मिस कर सकते हैं, तीन दिन मिस कर सकते हैं, कितने दिन मिस करेंगे? और इसी तरह ज्ञान और योग भी रोज होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है वो मेडिटेशन करना, लेकिन पहले राजयोग का कोर्स करके सीख कर फिर करना। दूसरी चीज जो हर सेंटर पर होती है वो होती है सुबह 7 से 8 या कुछ सेंटर पर सुबह 6:30 से 7:30 परमात्मा के महावाक्यों का अध्ययन, ज्ञान। मेडिटेशन एक्सरसाइज है, ज्ञान भोजन है। हम में से बहुतों ने मेडिटेशन कभी ना कभी ट्राई किया होगा, हमने कहा बहुत मुश्किल है, ये नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एक्सरसाइज तब की जा सकती है जब भोजन खा के थोड़ा सा बॉडी को शक्ति दी हो। शरीर कमजोर हो और हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए ज्ञान वो भोजन है और मेडिटेशन वो एक्सरसाइज है। तो हर सेंटर पर, पूरे विश्व में हर सेंटर पर सुबह 7 से 8 वो मुरली क्लास होती है, उसको मुरली कहते हैं, जहां हम परमात्मा के महावाक्य अध्ययन करते हैं। मतलब दीदी हमें पढ़कर सुनाती हैं पूरी क्लास को। सब लोग अपने घर से आते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे तो अपना स्कूल बैग लेकर आते हैं, टिफिन वगैरह लेकर रेडी आते हैं, फिर वहां से 7:45 उठ के फटाफट स्कूल जाते हैं, कोई अपने ऑफिस जाता है, लेकिन हर एक वो समय थोड़ा सा जरूर निकालता है। रोज का ज्ञान जब अपने अंदर भरता है तो पता ही नहीं चलता कुछ दिन में कैसी शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे ऐसा महसूस होगा जैसे बड़े दिनों से खाना नहीं खाया था और वो वाली शक्ति आ गई। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, उनके पति ने शरीर छोड़ा तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी जिस दिन आई थी। तो वो कहती, अब मुझे कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। तो वो कुछ भी सुनने की भी शक्ति में नहीं थी। तो उसको कहा, आप सिर्फ रोज सुबह ना मुरली क्लास के लिए आओ। कहते, ये कुछ नहीं कर सकता आपका, तो सिर्फ आ ही जाओ। तो वो आई और वो आगे बैठ जाती थी, उसको फर्स्ट रो में रोज बिठा दिया वहां पर। कुछ समझ नहीं आता था उसको क्योंकि वो उसमें भी रो रही होती थी बैठे बैठे, लेकिन उसने दृढ़ता की शक्ति से वो रोज आई जरूर। 3 महीने से पहले पहले उसका मन बहुत शांत और स्थिर होने लग गया। इसमें उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन जो संगठन की शक्ति होती है ना, जब बाकी कर रहे होते हैं वो संगठन की शक्ति और वो ज्ञान की बातें जो अंदर जा रही थी, तो वो 3-4 महीने में बहुत ठीक हो गए। 5वें महीने में उसके 30 साल के दामाद ने शरीर छोड़ दिया। फिर तो वो कहती है, अब तो बस, अब तो मेरी जीवन का कोई पर्पज ही नहीं है, मेरी बेटी इतनी छोटी है, मेरे साथ ही ऐसा बार बार हो रहा है। लेकिन फिर उसको किसी ने सहयोग दिया, उसके घर गए, रोज उसको सेंटर लेकर आए, उतने ही बचे। 2 महीने के अंदर वो आत्मा बिल्कुल शांत स्थिर, आज वो औरों की सेवा करती है। तो ये एक ताकत है, एक ताकत है संगठन की शक्ति और दूसरा ताकत है परमात्मा के महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं। तो ये रोज होती है हर सेंटर पर 365 दिन। 1937 जब से परमात्मा ने ये ज्ञान देना शुरू किया तब से अभी तक एक भी दिन नहीं होता जब मुरली मिस होती है। कोविड वो सिर्फ पहला समय था जब सेंटर बंद रहते थे, लेकिन फिर उस टाइम ऑनलाइन मुरली चलती थी। लेकिन कोविड के अलावा तो 1937 तक कोई ऐसा समय भी नहीं आया जब मुरली क्लास नहीं हो रही थी। तो वो उसको आप कम से कम 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इसमें कौन सी शक्ति है। 3 महीने 1 घंटा सिर्फ 90 घंटे होते हैं। आप 4 दिन यहां आए, कितने घंटे निकाले? 4 दिन यहां आए, कितने घंटे निकले? 4-5 दिन ट्रैवल सब मिला के कितने घंटे? 100-125 घंटे तो हुए होंगे कम से कम। लेकिन वो 125 घंटे को अपने भाग्य में परिवर्तन करने के लिए हमको कम से कम 2 महीने सही 1 घंटा और जरूर निकालना चाहिए, ताकि ये सिर्फ सुनी हुई चीज नहीं मेरी अपनी व्यक्तित्व शक्ति बन जाएगी। और एक चीज जो और करनी है वो है अन्न की परहेज, सात्विक अन्न, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। आपको भोजन अच्छा लग रहा है यहाँ पर? सिंपल भोजन। सात्विक अन्न का मतलब ये नहीं है कि हम कच्चा खा रहे हैं, उबला हुआ खा रहे हैं, वो तो हर एक की चॉइस होती है। सात्विक अन्न मतलब आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज वो शाकाहारी होना चाहिए। दूसरा, पेट और मन के लिए वो लाइट रहे, उसके लिए यहां जो भोजन बनता है वो बिना प्याज लहसुन के बनता है। इसलिए आप देखो, आप कितना भी खाएंगे आपको लगेगा ओ मैंने बहुत खा लिया, थोड़ी देर के बाद आपको भूल भी जाएगा कि आपने खाना खाया है, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है। जो अन्न पेट के लिए लाइट होगा वही अन्न मन के लिए भी लाइट होगा। आप कभी भी देखो जो बहुत भारी खाना खा लेते हैं तो उबासी आने लगती है, भारी लगने लगता है, फिर हमें चाय पीनी पड़ती है उस नाश्ते के बाद, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते यहाँ क्या होने लगता है, भारी होने लगता है, क्योंकि हमने भारी खाना खाया है। तो शाकाहारी भोजन और बिना प्याज लहसुन के जो खाना बनता है वो बहुत लाइट होता है। इसीलिए नवरात्रों में खाना कैसे बनता है? बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि नवरात्रों में हम किसका आह्वान कर रहे हैं? शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, दिव्यता का आह्वान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, मतलब लाइट रहना चाहते हैं और पावरफुल रहना चाहते हैं। तो सिर्फ 9 दिन क्यों लाइट और पावरफुल रहना चाहिए? 9 दिन क्यों रहना चाहिए? हमेशा रहना चाहिए। और जो हम मांसाहारी भोजन खाते हैं, नॉन वेज, वो हमारे मन और शरीर को कौन सी एनर्जी देता होगा? शरीर के लिए तो खैर अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसमें कुछ हेल्दी नहीं है, प्रोटीन्स है उसमें, प्रोटीन है, कोई विटामिन्स है, लेकिन डेथ की एनर्जी कभी हेल्थ नहीं दे सकती है किसी को, क्योंकि उसकी फंडामेंटल एनर्जी ही कौन सी है? मृत्यु है। मृत्यु जीवदान नहीं दे सकता किसी को, स्वास्थ्य नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि उसकी एनर्जी ही मृत्यु है। स्लॉटर हाउस में क्या वाइब्रेशन होगी उस पशु की? क्या वाइब्रेशन? इसको सीन लेकर आइए सामने, वो स्लॉटर हाउस का क्या वाइब्रेशन होगा? क्या वाइब्रेशन होगा? जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है ना, तो स्लॉटर हाउस का वाइब्रेशन कैसा होगा? डर, गुस्सा, नफरत जो मेरे साथ वो कर रहा है, दुख, दर्द, हिंसा, फिर मृत्यु। और हमने कहा ये स्वास्थ्य देगा, ये ना तन को स्वास्थ्य दे सकता है ना ये मन को सुकून दे सकता है। तो इसका भी प्रयोग करके देखें, सिर्फ 3 महीने प्रयोग करके देखें कि 3 महीने हम शाकाहारी सात्विक खाना खाएं। और तीसरी चीज जो ध्यान रखी जाती है यहाँ भोजन की, सिर्फ ये नहीं कि वो शाकाहारी खाना है, सिर्फ ये नहीं कि वो प्याज लहसुन के बिना बना हुआ हल्का खाना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान जो रखा जाता है बनाते समय मन की स्थिति, भोजन बनाते समय मन की स्थिति। जहां तक हो सके ना वापस जाने के बाद एक प्रयोग करना। क्यों आपको ये करना है? आपका रोल जो है ना ऑलरेडी आपको बहुत सारी नेगेटिविटी एक्सपोजर दिलाता है, ये बात लिखनी है, ये बात छापनी है, ये बात करनी है, पोस्ट, ये वीडियो बना, इस सब में तो बाहर दुनिया की बातें हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हमें वो कवर करना है, तो हमारा वैसे ही एक्सपोजर बहुत नेगेटिव कॉन्टेंट के साथ है। कम से कम हमें खाना वैसा खाना है जो हमारे मन को क्या दे? शक्ति दे। तो जहां तक हो सके ना घर का खाना खाइए, नियम बना लो इसको। आजकल समाज में नियम बन गया, चलते फिरते चल ये खा लेते हैं, चलते फिरते ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, बाहर जा रहे हैं, घर बैठ के भी बोलते चलो बाहर चलते हैं आज खाना खाने के लिए। हमें ये लगा कि बाहर खाना खाने से खुशी मिलने वाली है किसी को? नहीं मिल सकती है। स्वाद मिल सकता है, टेस्ट, खुशी नहीं मिल सकती है। तो जहां तक हो सके घर का खाना खाना, वो आपके आधे तनाव को तो वो ही खत्म कर देगा, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। हमारे यहाँ तो बहुत प्रयोग होता है उसके ऊपर, लोगों के भाग्य बदल जाते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों के घर के रिश्ते बदल जाते हैं जब खाना बनाने वाला बदल जाता है। या तो वो बदल ही गया, मतलब वो व्यक्ति चला गया दूसरा खाना बना रहा है, या जो खाना बना रहा है उसकी मनोस्थिति बदल गई तो वो व्यक्ति बदल जाता है। खाना बनाने वाला बदल जाता है ना तो परिवार बदल जाता है, इतनी पावर है। इसीलिए कहा जाता था द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, मतलब खाना बना दो उसके लिए तुम्हारा मन उसके मन से जुड़ जाएगा। अभी हम किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं सारा दिन, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जब बहुत सारा खाना इकट्ठे बनता है कहीं पर तो कभी कभी बहुत शोर से जोर से जल्दी करो ये दो वो दो, एनर्जी ठीक नहीं है। और सबसे मुख्य एनर्जी जो बाहर की खाने की होती है वो आपके बारे में सोचकर खाना नहीं बनाया जाता, वो अपने बारे में सोचकर खाना बनाया जाता है कि आप खाएंगे तो हम कमाएंगे। तो उसमें फंडामेंटल एनर्जी देने की है ही नहीं, उसमें फंडामेंटल एनर्जी कौन सी है, लेने की है, कमाने की है। अगर देने वाला बनना है तो देने वाली एनर्जी का खाना खाना पड़ेगा। उसमें फंडामेंटल एनर्जी पैसे की है, वो बिजनेस मॉडल है, उसमें प्रॉफिट की एनर्जी है। और जब घर में खाना बनाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, आज ये खाएंगे इनको ये विटामिन मिलेगा, इससे इनको ये तंदुरुस्ती मिलेगी, इसमें मैं ये भी चीज डाल दूं, ये भी इनके लिए अच्छी है, देने की एनर्जी है, देने की एनर्जी है। जब प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो वो तो परमात्मा की याद की एनर्जी से बनाया जाता है। तो तीन प हैं, पैसा, परिवार, परमात्मा, तीनों में से एक की एनर्जी का हम खाना खा रहे हैं। बाहर खरीद के खा रहे हैं पैसे की याद में बना खाना, घर पर खा रहे हैं और घर वाला मोह में बना रहा है तो वो परिवार के प्यार का खाना। लेकिन घर में रहते हुए ही प्रसाद, बार बार हम मंदिर नहीं जा सकते, आश्रम नहीं आ सकते खाने के लिए, लेकिन घर में रहते हुए ही जब हम मेडिटेशन सीख लेते हैं तो परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाते हैं। यहाँ किचन में अगर रसोई में आप जाएंगे बहुत ध्यान रखा जाता है, कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए भोजन बनते समय, कोई शब्द नहीं जाना चाहिए भोजन संते समय, रसोई शुरू होने से पहले पहले 15 मिनट वहाँ मेडिटेशन किया जाता है, फिर भोजन में अच्छे अच्छे संकल्प डाले जाते हैं और साथ साथ वो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, प्रवचन चल रहा है, भजन चल रहे, वो तो 24 घंटे चलेगा उधर। और तब उसके बाद भी सारा भोजन एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा लेकर मेडिटेशन के रूम में जाकर उसके साथ मेडिटेशन 10 मिनट किया जाता है और फिर वो वापस आकर सबके खाने में डाला जाता है। जो शांति आपको यहाँ महसूस हो रही है उसमें बहुत बड़ा रोल रसोई में होता है, रसोई में होता है। तो क्या हम ये चीज वापस जाने के बाद नहीं कर सकते कि हम सात्विक अन्न खाएं, कर सकते नहीं कर सकते, कौन कौन कर सकता है, 3 महीने के लिए करके देखना। और जहां तक हो सके स्ट्रिक्ट रहना, मुझे घर का खाना खाना है। आप देखो 30-40 साल पहले लोग अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाया करते थे, कहते थे ना, कहते थे किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। तो हमने उसको जाति और धर्म उसके नाम पर डाल दिया सारा, वो नहीं था, वो एक्चुअली ये था कि आप जहां का भी पानी भी पी रहे हैं ना वहां की वाइब्रेशन आप अपने अंदर डाल रहे हैं। अगर किसी घर में बहुत कलह कलेश चल रहा है और आप उनके घर सिर्फ एक शाम बैठने गए, आपने एक दो ग्लास पानी पी लिया वहां पर, लेकिन उनके घर में कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है, वापस आने के बाद आपके मन की स्थिति पर वो असर होना ही होना है। फिर थोड़ी देर के बाद आप उसका असर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हम रोज ही बाहर खाना खाने लगे, रोज ही बाहर पानी पीने लगे, रोज ही इधर उधर जाने लगे, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे मन की स्थिति एक्चुअली सिर्फ हमारी नहीं है, अनेकों की मन की स्थिति की वजह से हमारी मन की स्थिति दूषित हो रही है। तो जब आप ऑफिस भी जाते हैं ना, अपना डब्बा और अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेकर जानी चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा पानी होता है वैसी वाणी होती है, होता या नहीं होता। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा पुराने जमाने के तौर तरीके पे वापस जाना है। हम सब पहले अपना डब्बा लेके जाते थे ना घर से, लेके जाते थे कि नहीं लेके जाते थे? आजकल घर पे बैठकर डब्बा ऑर्डर करते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजें बनाए ना, कौन सी चीजें हमने बदली हैं, उसी से पता चल जाएगा कि संस्कार और भाग्य क्यों बदल रहा है, क्यों खुशी और सुकून। तो ये तीन चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है, मेडिटेशन रोज करना है, ज्ञान रोज स्टडी करना है और अन्न को शुद्ध रखना है। क्योंकि कई भाई बहने कहते हैं हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, हम रोज मुरली जा रहे हैं, क्यों नहीं हमें ये एक्सपीरियंस हो रहा? चेक करना है अन्न कौन सा खा रहे हैं। तीनों चीजें कर ली ना तो पैकेज कंप्लीट है। यहां चार दिन सिर्फ ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं, ये तीन चीजें ही हैं और ये तीन चीजें आपके मन के ऊपर असर डाल रहे हैं। यहां से जाकर अगर आप इसको एक घंटा रोज इस संघ में जाएंगे, वायुमंडल में जाएंगे और ये दोनों चीजें करेंगे, जो मनोस्थिति आपकी आज है वो इससे सिर्फ धीरे धीरे ऊपर 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 और ऊपर ही जाएगी, वाइब्रेशन ऊपर जाएगी। और अगर ध्यान नहीं रखा तो अपने आप वातावरण की वजह से ही नीचे आ जाती है। और जब हम ये तीन चीजें रोज करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, कोई मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए? टेबल उठाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद? फिर नहीं, एक हाथ से उठा लेंगे उसके बाद तो मेज को। जैसा कर्म वैसा भाग्य, ये हमने बचपन से सुना है, लेकिन फिर भी सारा दिन हम उस लॉ को याद नहीं रखते हैं, याद नहीं रखते और उसका प्रयोग नहीं करते हैं। और ही जब भी कोई बड़ी बात आती है तो हम उंगली किस पर रख देते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए आज हमने देखा सुबह, हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं नाराज। छोटी छोटी बातों के लिए हम यहां उंगली रखते हैं। आज सुबह हमने देखा वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो दुख, वो खुशी कौन क्रिएट कर रहा है? छोटी छोटी बातों के लिए हम उंगली यहां रखते हैं और बड़ी वाली बातों के लिए उंगली किस पर रख देते हैं? किस पर रखते हैं? किसकी वजह से हुआ ऐसा, हम किस पर उंगली रखते हैं? रखिए उंगली, अभी रखते हैं ना उसके ऊपर। लोग भी आकर कहते हैं क्या करें, ईश्वर की मर्जी। हाँ, किसी के घर परिवार का सदस्य चला गया, उसको आकर कहते ये तो ईश्वर की मर्जी थी। ईश्वर क्यों ऐसी मर्जी करेगा? ईश्वर क्यों करेगा ऐसा, हमने कभी सोचा नहीं? एक क्षण सोचो, अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता तो शायद आपके पास अखबार में छापने के लिए कुछ नहीं होता। ये तो मैं सोचा ही नहीं था, कुछ होगा ही नहीं आपके पास छापने के लिए, क्योंकि अगर भगवान भाग्य लिख रहा होता तो हरेक का भाग्य कैसा होता? हरेक का भाग्य कैसा होता? अगर भगवान भाग्य लिख रहा होता तो हरेक का भाग्य कैसा होता? कोई एक्सीडेंट ना होता, कोई बीमार ना होता, कोई अकाल मृत्यु ना होती, कोई झगड़ा ना होता, कोई युद्ध ना होती, कोई करप्शन ना होती, कुछ होता ही ना जो कलयुग में हो रहा है। अगर भगवान भाग्य लिख रहा होता तो भाग्य परफेक्ट होता एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाग्य सबका इक्वल होता, क्योंकि वो लिख रहा है। अगर आज आप अपने बच्चों का भाग्य लिखेंगे तो एक का कम दूसरे का ज्यादा अच्छा लिखेंगे ऐसा कभी? कैसा लिखेंगे दोनों का? कैसा लिखेंगे दोनों का? एक जैसा, परफेक्ट। भले आपका एक बच्चा थोड़ा मस्ती करता है और एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन तो भी आप भाग्य दोनों का कैसे लिखेंगे? एक जैसा, परफेक्ट। क्या आज समाज में भाग्य एक जैसा है? नहीं। क्या परफेक्ट है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाली बात सच नहीं है। एक और बात बचपन से सुनी थी कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। भाग्य, कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं इसलिए हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म में छोटी सी कुछ कुछ की थी तो भाग्य में भी छोटी छोटी कभी कभी बातें आ जाती हैं। कर्म हमारे एक जैसे नहीं है तो भाग्य भी हमारा एक जैसा नहीं हो सकता है। तो दोनों में से कौन सी मान्यता सच लगती है, परमात्मा हमारा भाग्य लिखता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं? किस पे रखनी उंगली? अभी उंगली रख लो थोड़ा सा, किस पर रखनी उंगली? और फिर अगर अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो किसके पास जाना? किसके पास जाना? हम औरों के पास जाते हैं, प्लीज कोई उपाय बताओ, प्लीज कोई उपाय बताओ, प्लीज कोई उपाय बताओ। आपको उपाय बता सकते हैं वो उपाय जिसके आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाए। कोई भी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता है। अगर इस सृष्टि पर किसी के पास ताकत होती कि वो आपके भाग्य को बदल दें, तो फिर पहले चेक करना कि उनका भाग्य परफेक्ट चल रहा है। भाग्य में जो लिखा है वो तो आना ही आना है, लेकिन ये याद रखना है कि उसको भाग्य में लिखा किसने था, किसने लिखा था। चलो एक बॉल पकड़ो ऐसे, ये कर्म है। कर्म में तीन चीजें आती हैं, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार और नहीं दिखने वाली भाव भावनाएं, इंटेंशन। ये चार चीजें मेरा कर्म है। कर्म मतलब वो एनर्जी जो मुझसे निकलकर बाहर जाती है। हम सिर्फ अपने बोल और व्यवहार को कर्म बोलते हैं, कहते मैंने उनसे बड़ी अच्छी तरह से बात की, मैंने उनको सहयोग भी दिया, मैंने अंदर सोचा कैसे उनके लिए। क्या हमें आता है कि अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन थोड़ा सा कड़वा सोचे, ऐसे आता है किसी को करना? आता है नहीं आता? आता है नहीं आता? किसी को बहुत तरक्की मिली, हम कहते बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत दुआएं। अंदर सोचते इसको क्यों मिली, मतलब समझ नहीं आया मुझे, इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर हमने कहा मैंने तो उनको बड़े प्यार से मुबारक दी, तो मेरा कर्म कैसा था? श्रेष्ठ? नहीं, मेरा कर्म वो वाला था जो मैं अंदर सोच रही थी, क्योंकि लाइन तो एक दो बोलते हैं, सोच तो हजार चलती है। तो अगर मैंने दो पॉजिटिव लाइन बोली लेकिन 100 नेगेटिव लाइन सोची, तो भी मेरा -98 पे चलता है। इसलिए कर्म की चेकिंग शब्दों और व्यवहार पे नहीं, कर्म की चेकिंग इंटेंशन, भाव भावना और सोच पर करनी होती है। अब बॉल को पकड़े, अब ये बॉल आपका कर्म है। बहुत ध्यान से सोच समझ के, बिना दूसरों को देखे हुए कि दूसरे कैसे फेंकने वाले हैं, आप सामने वाली दीवार, पीछे जो मेरे हैं आपके लिए सामने हैं, आप अपने कर्म को सोच समझकर हमेशा फेंकना। ये याद रखते हुए कि जिस एंगल और जिस स्पीड पे आप उस गेंद को फेंकेंगे वो सामने की दीवार पे हिट करेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, वो गेंद वापस आएगी, हर एक की अलग अलग आएगी। उस समय दूसरे की गेंद को देखकर नहीं बोलना इसकी ऐसे क्यों आ रही है, उसकी वैसे आएगी जैसे उसने फेंकी थी, मेरी वैसे आएगी जिसने मैंने फेंकी थी। अब जरा एक बार प्यार से फेंको अपनी गेंद को, हिट करेगी और अब ये वापस आएगी। ये वापस उसी क्षण आ सकती है, ये वापस 10 मिनट के बाद आ सकती है, ये वापस 10 दिन के बाद आ सकती है, ये वापस 10 साल के बाद आ सकती है, ये वापस 100 साल के बाद आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर। ये एक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा काम करता है, सबके साथ काम करता है, ऐसे ही लॉ ऑफ कर्म है, हमेशा काम करता है, सबके साथ काम करता है। अब जब ये गेंद वापस आ रही है तो क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं? जो हम गेंद फेंक रहे हैं वो कर्म है, जो वापस आ रही है वो है परिस्थितियां, वो है शरीर का स्वास्थ्य कभी ऊपर नीचे, वो है लोगों का मेरे साथ व्यवहार, वो है मेरा काम कारोबार में उतार चढ़ाव। जो मेरे साथ हो रहा है वो गेंद वापस आ रही है, जो हम कर रहे हैं वो गेंद बाहर जा रही है। एक मिनट आप खड़े होंगे, नहीं आपने, हाँ अभी मैं, आपने आंसर देना है, हाँ अभी मैं इतने सबके सामने, वो भी सब मीडिया के, इनके साथ बहुत गलत तरह से व्यवहार करते हो, बहुत गलत शब्द, जोर जोर से चिल्लाना, गलत बात करना, ये मैं इनके साथ करते हो, इनके लिए वो गेंद कौन से डायरेक्शन में है, अपने आप को रख लीजिए उस जगह पर, वो गेंद आपके लिए कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, करिए हाथ से, कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं? आप फेंक नहीं रहे हैं, मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हूं, गेंद कौन से डायरेक्शन में आ रही है आपके लिए? ऐसे मैं फेंक रही हूं ना आपकी तरफ, तो आपके लिए वो गेंद कौन से डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे। अब इसको पकड़ के रखना, ये पिक्चर विजुअलाइज फिक्स करना है, आपके लिए वो गेंद कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। कोई भी मेरे साथ जो व्यवहार करता है, अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, नहीं करता, बहुत बुरा करता है, गेंद कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है। अब आपका मन सबसे पहले कहेगा मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। आंसर, आपका मन ये कह रहा है ये गेंद मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है। आंसर, शायद ये गेंद मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है, पहले मैंने फेंकी थी, शायद नहीं 100% पक्का, क्योंकि फेंके बिना आ नहीं सकती सामने से गेंद। अब अपने जीवन में आने वाली गेंद देख लीजिए सारी, पहले तो चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो लोगों का व्यवहार है, चाहे वो काम कारोबार में उतार चढ़ाव है, जो भी बात ऐसे आ रही है वो पहले ऐसे गई थी फिर ऐसे आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने कब फेंकी थी, लेकिन इस समय इनके सामने एक गलत गेंद आ रही है, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी वाली बॉल आ रही है। सबसे पहले इनका मन कहेगा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो सारे व्यर्थ संकल्पों को पहले फुल स्टॉप लगाओ और पहले ये कहो मेरा ही कर्मों का हिसाब किताब वापिस आ रहा है, मैंने कभी ना कभी फेंका था तो वो वापिस आ रहा है। अब फिर मन कहेगा मैंने इनके साथ कब गलत बात की, इनको तो मैं पहली बार मिली हूं। तो हमें याद रखना है कर्मों का हिसाब किताब किसके और किसके बीच है, इस कपड़े और उस कपड़े के बीच नहीं है, इस चोले और उस चोले के बीच भी नहीं है, मेरे और इनके बीच है। किसके और किसके बीच है, इधर मेरे और इनके बीच नहीं है, मेरे और इनके बीच है। किसके और किसके बीच है, मुझ आत्मा और उस आत्मा के बीच है। इस शरीर में आने के बाद मैं इनसे पहली बार मिल रही हूं, लेकिन मैं इनसे पहली बार नहीं मिल रही हूं, मैं सिर्फ इस शरीर में आने के बाद इनसे पहली बार मिल रही हूं। पहले मिल चुके हैं, अभी मिल रहे हैं और फिर से मिलेंगे। वो गेंद जब वापस आती है उतनी देर में हम कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गेंद मेरे पास ऐसे आ नहीं सकती जब तक मैंने फेंकी नहीं थी। अब इनको क्या करना चाहिए, अब इनके पास बड़ी नेगेटिव गेंद आ रही है मेरे से, तो अब इनको क्या करना चाहिए, क्या ये आने वाली गेंद को रोक सकती है। ये पक्का कर लो आप आने वाली गेंद को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो गेंद तो ऑलरेडी, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, कुछ है लाइफ में कंट्रोल में या नहीं है। पूर्व किए हुए कर्म वापिस आ रहे हैं। अब ये जैसा सोचेंगी, जैसा ये मुझसे बोलेंगी, जैसा ये व्यवहार करेंगी, वो इनकी नई गेंद है जो ये फेंकेंगी। अभी फेंकेंगी कि नहीं, नई गेंद फेंकेंगी ना, फेंकेंगी या नहीं फेंकेंगी। क्या ये हो सकता है कि मैं इनको इतनी नेगेटिव एनर्जी फेंको रही है, एक भी संकल्प नहीं करे, क्या ये हो सकता है, नहीं। सोच तो चलनी ही है, नई गेंद तो बाहर जानी ही है, लेकिन चॉइस ये है कि इस बार कौन सी गेंद फेंकनी है। आप बताइए अब कौन सी गेंद फेंकनी चाहिए इन्हें, यहां से नेगेटिव जा रही है, अब इनको कौन सी गेंद फेंकनी चाहिए, कितनी पॉजिटिव, कितनी पॉजिटिव गेंद फेंकनी चाहिए अभी इनको। लेकिन मैं तो यहां से गलत करते जा रही हूं, फिर इनको क्या करना चाहिए, हां जी। हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे से गलत बात करता है, हम भी वैसे ही बात कर देते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव गेंद आई और फिर से कौन सी गेंद भेजती, फिर से नेगेटिव भेजती, अब फिर से भेज दिया फिर आई गई। तो हमेशा फर्स्ट रूल ऑफ द लाइफ गेम, अगर नेगेटिव गेंद सामने से आ रही है तो स्वप्न में भी फिर से नेगेटिव गेंद नहीं भेजना उसको। पुराना हिसाब किताब आ रहा है, वो जो आ रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अब हम जो फेंक रहे हैं वो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है? मेरे है। तो अब कौन सी वाली गेंद फेंकनी है? पक्का शुरू करें फेंकना, शुरू करें फेंकना। गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं, नफरत का जवाब नफरत नहीं, लेकिन क्या देना है? क्या करना है? अपने कर्मों को पहले कुछ करके आए थे ना, तभी तो ये गेंद आई, ऐसे तो आ नहीं सकती। आप सारा दिन जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हर एक के पुराने कर्मों के परिणाम ही रिपोर्ट करने पड़ते हैं आपको सारा दिन। कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता इस सृष्टि पर जो मैंने पहले किया नहीं था, उसी का परिणाम है। नहीं तो लाइफ इज वेरी अनफेयर कि किसी के साथ सब अच्छा चल रहा है और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। कौन डिसाइड करेगा ये? ये कौन डिसाइड करेगा? रैंडम नहीं चलती लाइफ। इसीलिए हर एक के घर में गीता सार टंगा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। और हम सारा दिन बोलते हैं ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, उस पर लिखा है जो हुआ अच्छा। तो उसका मीनिंग क्या है? मतलब जो हुआ सही, जो हो रहा है सही, और जो होगा वो बहुत सही, एज पर लॉ ऑफ कर्मा। तो अब मैं इतनी नफरत भेज रही हूं, इन्हें क्या भेजना चाहिए? क्या इन्हें क्षमा भी करना चाहिए? करना चाहिए क्षमा हमें लोगों को? करना चाहिए, करना चाहिए। अगर क्षमा की जगह इन्होंने सिर्फ चुप रहे लेकिन अंदर सब पकड़ के रख लिया दर्द, तो कौन सी एनर्जी की बॉल जाएगी फिर से? हम क्या कहते हैं, मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब मेरा कर्म सही ना? चुप रही लेकिन यहां पे क्या किया? रोई रोई रोई, और फिर सिर्फ यहां नहीं रोई, दूसरों के आगे जाके रोई, पता है मेरे साथ क्या किया उन्होंने, क्या किया? ये सब नेगेटिव बॉल्स हो जाएंगे फिर से। तो सबसे सहज संस्कार यहां से अपना बना लो, लोगों को एक सेकंड में क्षमा करना। मेरा ही पूर्व कर्म था, आया सामने, क्षमा करो, चुप तो करो। इवन अगर आप किसी के साथ कोर्ट में केस लड़ रहे हो ना, देश के कानून को अपना काम करने देना, लेकिन अपने कर्म का जो लॉ है उसमें कुछ दूषित होने नहीं देना। इवन उतना ध्यान रखना है। क्या उससे भी ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं? एक ये मुझे क्षमा कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो हम रोज मुरली में सीखते हैं, अगर इनको अपना हिसाब किताब अच्छे से चुप तो करना है और ही अपने कर्मों को और ऊंचा उठाना है, तो ये मुझे रोज दुआएं भेज सकते हैं। जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्या हम उनको दुआएं भेज सकते? जी आज की परिवेश कोई नहीं है, लॉ ऑफ कर्म 5000 साल पहले भी वही था, आज भी वही, आगे भी वही रहेगा। परिवेश कोई कर्म के लॉ को चेंज नहीं करने वाला है, हमें सिर्फ डिसीशन लेना है। मैं उनसे गलत व्यवहार कर रही हूं, क्या वो मुझे रोज दुआएं भेज सकते हैं? भेजना चाहिए। किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं? किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं? मुश्किल तब लगता है जब हमें लगता है हम उनके लिए कर रहे हैं। क्यों हम उनके लिए कर रहे हैं जब उन्होंने गलत किया? पहली बात तो उन्होंने गलत नहीं, पहले मैंने गलत किया था, और दूसरा अब भी जो हम कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? इवन अगर सिंपल, अगर आप पूर्व जन्म को भी छोड़ दो, सिर्फ अभी का भी देखो, मैं इनके साथ गलत कर रही हूं, हो सकता है ये वापस चिल्लाए तो भी इनकी तबीयत खराब होगी, हो सकता है ये चिल्लाए नहीं सिर्फ अंदर उस दर्द को पकड़ के रखे तो भी इनकी तबीयत खराब होगी, हो सकता है वो कुछ ना करे लेकिन अंदर इतना डिस्टर्ब थॉट्स क्रिएट करे, बाकी किसी को कुछ ना बोले तो भी इनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन अगर ये मुझे क्षमा करके मुझे दुआएं भेजती है, इनका मन सुकून में रहेगा, इनका शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरा तो बीमार हो जाएगा लेकिन इनका ठीक रहेगा, क्योंकि इन्होंने सही कर्म किया है। तो हम जो दुआएं भेज रहे हैं वो किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं ये? हम किसके लिए कर रहे हैं ये? बोलिए ना, अच्छे से बोलेंगे तो कल जाके करेंगे ना वापस। हाँ, तो अपने लिए करना आसान है या मुश्किल है?
सपोज आपने दिवाली पर किसी के लिए गिफ्ट लेनी है, तो हम सारा दिन क्या देखते, उन्होंने कितने का दिया था, हम भी उतने का ही देंगे, ज्यादा क्यों दें हम। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं दो। लेकिन आप मार्केट में गए, आपको एक बड़ी महंगी चीज पसंद आ गई, आपने कहा तो बहुत काम की चीज है, लेकिन मैं उनको क्यों दूं 5,000 का, उन्होंने तो मुझे 500 का ही दिया। तो कोई आपको धीरे से बोलता है, दे दो या अगले हफ्ते आपके ही घर वापस आने वाली है। फिर आप सोचेंगे 5,000 का, ले लो 5,000 दे दो, अपने घर ही आने वाला है। वो गेंद अपने घर ही आने वाली है कर्मा की। वो हमें लग रहा है कि हम उनको दुआएं दे रहे हैं, लेकिन हम उनको दुआएं नहीं, दुआएं देकर हम अपने घाव पर दवा लगा रहे हैं। और जब हम उनको वो दुआएं भेजते रहेंगे, तो जो हम पुराने वाले नेगेटिव बॉल्स फेंक कर आए हैं, वो नेगेटिव बॉल्स का हिसाब किताब क्या हो जाएगा, चुकतू। जब तक हम अपने कर्मों को ऊपर उठाएंगे नहीं, जब तक हम ये कहेंगे कि ईंट का जवाब आज के परिपेक्ष में क्या है, आज के परिपेक्ष को क्या बोलेंगे, कलयुग है ना, तो कलयुग का परिपेक्ष कैसा होगा, ईंट का जवाब। तो अब आप सोचो, मेरी तरफ ईंट आ रही है, पहली बात वो ईंट आई क्यों मेरी तरफ, क्योंकि मैंने पहले ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब मुझे किसी ने सिखाया ईंट आई, अब पत्थर फेंको रिटर्न में, तो वापस क्या आएगा, और पत्थर। जब और पत्थर आएंगे तो दो पत्थर फेंकेंगे हम। और ये करते करते हमने अपने कर्मों की क्वालिटी को क्या किया, डाउन डाउन डाउन। और जैसे कर्मों की क्वालिटी हुई डाउन डाउन डाउन, तो आत्मा की शक्ति क्या हुई, डाउन। वो मेज तो वहीं की वहीं है, लेकिन हमारी शक्ति इतनी घट गई कि हमें सब कुछ मुश्किल लगने लग गया, जबकि जीवन इतना आसान हो गया है पिछले 20 सालों में, इतना आसान हो गया है। आज आप इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, यहीं आप फोटो खींचते हैं, आप भेजते हैं, यहीं आप आर्टिकल लिखते हैं, एवरीथिंग इज सो ईजी, इट्स सो इजी। इतनी कंफर्टेबल लाइफ हो गई, तो हमें तो बहुत ही हैप्पी लाइफ होनी चाहिए थी, लेकिन इस कंफर्टेबल लाइफ को चलते 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 हमने वो परिपेक्ष बदल दिए, कर्म और संस्कार बदल दिए। युग कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, कर्म आपकी ढाल है, कर्म ही आपकी रक्षा करेगा। और कर्म ही वो कारण है, जगर हमारे जीवन में कुछ भी आता है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इस समय मीडिया के कर्म का जो जिम्मेवारी है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें आपकी गलती नहीं, बाकी दुनिया एडिक्ट हो गई है मीडिया से, वो उनकी गलती है। लेकिन फिर आप एक एक चीज जो भेज रहे हो उसका दुनिया पर असर पड़ रहा है, तो फिर हमें देने वाले को अपने कर्म की जिम्मेवारी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस करता है जो वो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसको लेने से सामने वाले का शरीर बीमार हो, तो बनाने वाले बिजनेसमैन का कर्म कौन से खाते में गया, कौन से खाते में गया। ऐसे ही जब हम कुछ ऐसा बनाएं, तो ये ध्यान रखें कि इन्फॉर्मेशन तो देनी है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें कि दूसरे के मन को दर्द और दूषित नहीं करना है। वो हमारा कर्म बनेगा, ये हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि उस कर्म से हमारे घर धन आता है। 4 एनर्जीज होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। वो धन से ही अन्न खरीदा जाएगा, वो अन्न आपका पूरा परिवार खाएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई उस धन से होती है, आपका मकान उस धन से बनता है, आपकी घर की हर चीज में वो धन की वाइब्रेशन है। धन सिर्फ पैसे नहीं होते, धन होता है पैसा कमाने की विधि का वाइब्रेशन। अगर मेरे कर्म से किसी को दर्द मिला और वो धन मेरे घर आया, तो वो धन के साथ दर्द भी तो आएगा ना फिर। इसीलिए ये टॉपिक है कि वैल्यू बेस्ड मीडिया, ये कोई समाज के लिए एहसान नहीं, ये अपने श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शक्ति है, ये अपने लिए हो रही है। थोड़ा सा एक ट्रांजिशन फेज आएगा, आपको लगेगा कि दूसरे तो ऐसे कर रहे हैं इसलिए दूसरे आगे जा रहे हैं, दूसरे आगे सिर्फ इधर तक जा रहे हैं, आपको अपने कर्मों में आगे जाना है। और जो कर्मों में आगे जाता है ना, वो सफलता में बहुत आगे निकल जाता है। काम कारोबार करते हुए अपना नहीं दूसरों का फायदा सोचिए। अगर आज आप एक फल की दुकान पर जाते हैं, वो फल वाले के पास चॉइस है, उसने नीचे दो सड़े हुए एप्पल रखकर उसके ऊपर चार अच्छे सेब रखकर वो अच्छा सा लिफाफा आपको दे देगा, लेकिन घर जाके आप कौन सी एनर्जी क्रिएट करेंगे उसके लिए? आप एक ऐसा व्यक्ति है, क्या दिया इसने? और ऐसा भी फल वाला होगा जो आपको बोलेगा, भाई साहब आज मेरे से मत लो, मेरे पास ना अच्छा नहीं, आप सामने वाली दुकान से लो। ऐसा फल वाला मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मिलते हैं या नहीं मिलते? आज के परिप्रेक्ष्य में भी मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन उस दिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कमाया। वो हमारे लिए 200 रुपए, लेकिन उसके लिए वो 200 रुपए बहुत ज्यादा होंगे। वो उसका काम कारोबार व्यापार है, उसका परिवार उस 200 रुपए का इंतजार कर रहा होगा घर पे, लेकिन उस दिन उसने अपने फायदे का नहीं सोचा, उसने आपके फायदे का सोचा। ये होता है काम कारोबार व्यापार भी ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? उस दिन उसने क्या कमाया? आप कितनी दुआएं देंगे उसको, कमाल है, कैसा व्यक्ति है, मुझे दूसरी दुकान पे भेज दिया इसने। फिर आप अपने तक भी नहीं रखेंगे, चार लोगों को बताएंगे, पता है आज ऐसा दुकानदार मिला। उस दिन वो भाई ने सिर्फ दुआएं कमाई। लोग कहते हैं लेकिन दुआओं से घर थोड़ी चलता है, पैसे कमाना पड़ता है, लेकिन जितनी उसने उस दिन दुआएं कमाई, उसके बाद उसका धन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। हम आंख बंद करके उसके पास जाएंगे, दूसरे आंख बंद करके उसके पास जाएंगे, उसका धन उतना बढ़ेगा जो उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उतना बढ़ जाएगा। ये एक सिद्धांत है, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। ये कोई भी करके देख ले, और वो किसी भी प्रोफेशन में करके देख ले, कोई भी करके देख ले, क्योंकि दुआएं एक बहुत बड़ी पुश होती है, वो आपके करियर को ऐसे आगे धक्का मार देती है जो आपने सोचा नहीं होता कभी। इसीलिए काम करना है, अपने आप को ये नहीं देना अरे क्या कर सकते हैं सब, ये करके नहीं चलेगा। जब बॉल वापस आएगी तो आप उस बॉल को ये नहीं बोल सकते लेकिन दूसरे भी तो वो फेंक रहे थे, जो फेंक रहे थे उनके पास भी आने वाले हैं। ये वो समय, बहुत सेंसिटिव समय से हम अभी गुजर रहे हैं। इस समय हरेक को अपनी अपनी बॉल का ध्यान रखना है। करेंगे अटेंशन वापस जाने के बाद? कुछ चेंज आएगा हमारे काम कारोबार के तरीके में वापस जाने के बाद? यस, लाना ही है। और एक करेगा ना, आप कभी भी देखो, अगर आप सुबह सुबह खाली सड़क पे जाओ अपनी गाड़ी या स्कूटर लेकर, कोई लोग रेड सिग्नल पे रुकते ही नहीं है, एक खाली सड़क है, कौन देख रहा है? ना कोई कैमरा है, ना कोई पुलिसमैन है, निकलते जाएंगे, कानून को तोड़ते हुए जाते हैं। अब आप जाके वहां रुक जाओ, कोई नहीं रुक रहा, आप वहां के जा रुक जाओ, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्या भाई सुबह सुबह क्यों खड़े सड़क के बीच में? उनको लगता है वो रेड सिग्नल पे खड़े होना भी गलत है इस समय, पीछे से कोई हॉर्न बजाएगा, चलते चलते मजाक उड़ाएगा, भाई क्या प्रॉब्लम है? आपको वो कुछ क्षण क्रॉस करने हैं जब लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, लोग आपको गलत भी कह सकते हैं, लोग आपको ये भी कह सकते हैं ये करके तो तुम्हारा सारा काम ही खत्म हो जाएगा। वो कुछ क्षण होते हैं, लेकिन वो दो तीन गाड़ियां जो आपके आगे जाएंगी, उसके बाद जो चौथी आएगी ना, वो आपको रुका हुआ देखकर आपके पीछे वो भी रुक जाएगी। रुकेगी या नहीं रुकेगी? आपको लगता है रुकेगी या नहीं रुकेगी? रुकेगी। और वो जो दूसरी गाड़ी भी पीछे रुकेगी ना, उसके रुकने का पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास वो पहली हिम्मत थी रुकने की। सही कर्म क्या है सबको पता है, कलयुग के एंड पे भी सबको पता है कि सही कर्म क्या है, सिर्फ मेजॉरिटी के अंदर सही पर खड़े होने की अकेले ताकत नहीं होती है। इसीलिए आज सुबह कहा था चिड़िया, तीन तरह के लोग बताया, एक जो आग लगाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं उस साइड पे जो आग लगाते हैं, सबसे ज्यादा लोग पता है कौन सी साइड पे होते हैं? सिर्फ जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। हैं। आग लगाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, आग बुझाने के लिए भी बहुत थोड़े चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी तो सिर्फ ऐसे खड़े हैं, जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। उनको पता है ये गलत है, लेकिन वो कहते हैं क्या करें, सब कर रहे, तो हमको भी करना पड़ता है। लेकिन जब एक जना सही करेगा, आप निमित्त बन जाएंगे दूसरे को भी सही करने की हिम्मत देने के लिए। अच्छा, ये कर सकते हैं ना, मैं भी करूंगा। और उस सब का कर्म का पुण्य भी किसके पास चला जाएगा, जिसने सबसे पहले वो सही किया था। नहीं तो सब गलत कर रहे हैं, सब रेड सिग्नल तोड़ रहे हैं तो हम भी तोड़ रहे हैं, तो वो कानून तोड़ रहे हैं तो फाइन पड़ेगा, हम तोड़ेंगे तो हमको भी फाइन पड़ेगा। तो अब वो समय नहीं है कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, जो सही है वो ही करो। यहां पर माउंट आबू में एक होटल है, उसका नाम है होटल हिल्टन। वहां पर एक बार हम सब सेशन करने गए थे, तो वहां का जो शेफ है वो बाद में आया, वो कहता अच्छा आपका मतलब है वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। मैंने कहा, कहते हमारे होटल में तो नॉन वेज बनता है। मैंने कहा आप सोचो आपको क्या करना है। तो वो जो ओनर थी उस होटल की, वो भी हाई सुन रही थी, तो वो शेफ को बोलते चल कल से अपन वेजिटेरियन करते हैं होटल को पूरा। बहुत बड़ा होटल है वो शहर का, वन ऑफ द। तो वो शेफ बोलता है मैम आप क्या बात करते हो, वेजिटेरियन करेंगे तो कौन आएगा यहाँ पर, सारे आते हैं गुजरात से भी यहीं आते हैं हॉलिडे करने के लिए, कौन आएगा यहाँ पर। वो कहते नहीं कल से हम वेजिटेरियन करते हैं। फिर भूल गई मैं तो बात, हम तीन महीने बाद यहाँ वापस आए, उसको मिले, मैं कहा बहन क्या हालचाल, कहती वेजिटेरियन ही चल रहा है अभी तक एकदम, तीन महीने हो गए। मैं कहा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो कहती पहले डिप हो गया, पहले वो एकदम से डिप हो गया, लेकिन फिर वो सडनली ऊपर हो गया। और वो ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात राजस्थान से बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो आती है जो बहुत खुश थे कि इस होटल में कोई नॉनवेज नहीं बनता, तो वो सारे इधर ही आने लग गए हैं, तो वो पहले डिप हो गए और फिर ऐसे चला गया। तो वो एक जो छोटा सा डिप होता है ना, जब हम एक कुछ नया करते हैं आता है, सबके में नहीं आएगा, हो सकता किसी में नहीं भी आए, लेकिन अगर आए भी तो उसको दृढ़ता से क्या करना है, पकड़ कर रखना है, क्योंकि सही कर्म का रिजल्ट कभी गलत हो नहीं सकता। ये मत सोचना हम अपने बच्चों को कम साधन दे पाएंगे, कम साधन देंगे लेकिन दुआएं भरे धन से देंगे तो आपके बच्चे कम साधन में भी बहुत तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत लोगों की दुआएं लगी हुई होंगी। तो वो वाली परिभाषा को खत्म करें कि भौतिक धन से हमारे घर पे खुशी आती है, साधन आते हैं, बहुत सारे घर हैं आज, बहुत साधन है, हर चीज है जो पैसों से खरीदी जाती है, लेकिन जब उनका बच्चा घबराता है, डरता है, एग्जाम देने की शक्ति नहीं होती है, तो वो सारा पैसा मिलके भी उस बच्चे को उस एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शक्ति पैसों से नहीं, वो शक्ति माता पिता की शक्ति से बच्चों को मिलती है, और माता पिता कमाएंगे अपने कर्मों से। तो आज से याद रखेंगे कौन सी बॉल फेंकनी है, इसको व्हाइट कलर के हम बोलते हैं पॉजिटिव वाले, और अगर सामने से नेगेटिव आ रही है तो कौन सी भेजनी है, और अगर सामने से दो ब्लैक आएंगी ना तो हमें 10 व्हाइट भेजनी है। कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे ना, ऐसा नहीं है कोई मेरे साथ अत्याचार करे, नहीं, लेकिन कोई चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, झूठ बोल रहा है, परेशान है, दुखी है, सिर्फ उनके लिए दुआ करो। ये शक्तिशाली आत्मा है, जो हम सुबह से आज अपने लिए कर रहे हैं वो हमें दूसरों के लिए भी करना है। ये शक्तिशाली आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये शांत आत्मा है, जिस संस्कार की उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है उसको दुआ बनाकर उनको भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। परमात्मा एक थ्री स्टेप फॉर्मूला सिखाते हैं, सामने वाला आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा ना, आप सिर्फ एक संकल्प करो, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बोल सकते हैं एक बार, बोलिए ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। बोलते 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 भगवान कहता है सेकंड स्टेप, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। थ्री स्टेप फॉर्मूला, बहुत अच्छे बोलते जाओ, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको चेंज कर देगी। ये हमेशा वर्क करता है, हमेशा हमेशा हमेशा, लेकिन सबसे पहले कौन बच जाता है, हम। तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हम ईंट का जवाब किससे देंगे? हम ईंट का जवाब किससे देंगे? याद रखना, हमें ये वाली आत्मा नहीं, हमने कौन सी वाली आत्मा बनना है? बस कलयुग से सत्युग ऐसे आएगा, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला। वो ऐसे ऐसे करेंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे। उनका दिया बुझा हुआ है ना, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। हमारा दिया जगा हुआ है तो हम ऐसे करेंगे। और जब हम रोज सुबह अपनी शक्ति भर लेंगे ज्ञान और योग से, तो सारा दिन में ये करने में मेहनत लगेगी नहीं जितनी अभी लग रही होगी कि कैसे करेंगे, वो आपको सहज आएगा। सहज, बिल्कुल सहज, क्योंकि शक्ति बढ़ गई। ठीक है, तो जाने के बाद क्या करना है? सबसे पहले राजयोग शिविर, और उसके बाद 2 महीने के लिए 1 घंटा अपने आप को देना। मन को ये कहने नहीं देना मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप सुबह नहीं जा सकते, आप दिन में कभी भी चले जाओ, लेकिन 2 महीने के लिए उस वाइब्रेशन में जाना जरूर है। चलिए 1 मिनट सीधा होकर बैठेंगे। आज किस किसने नाश्ता मौन में खाया? मौन में खाया, अच्छा लगा मौन में खाकर? चलो आज रात्रि का भोजन भी हम मौन में खाएंगे। सामने लेकर आए उनको जिनकी तरफ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। ये मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है, मैंने कभी ना कभी इनके साथ ऐसा कुछ किया था। सबसे पहले मन में संकल्पों से उनसे क्षमा मांगे। आज उन्होंने किया, लेकिन मैंने पहले कभी कुछ किया था, मुझे याद नहीं कब किया क्या किया, लेकिन मैंने पहले किया था, तो पहले की हुई गलती के लिए उनसे क्षमा मांगे। आपकी क्षमा उनके घाव को ठीक करना शुरू करेगी। तो पहला संकल्प, मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूं अपनी पुरानी गलती के लिए। दूसरा संकल्प, आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूं। तीसरा संकल्प, पुरानी बातें खत्म हुई, आज मैं हर बात को बिंदी लगाती हूं। और चौथा संकल्प, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं और दुआएं। आप शक्तिशाली आत्मा है, आप पवित्र आत्मा है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, आपकी और मेरी बहुत अच्छी बनती है। मेरी तरफ से दुआएं दुआएं और दुआएं। पहला संकल्प, मैं क्षमा मांगती हूँ। दूसरा संकल्प, मैं क्षमा करती हूँ। तीसरा संकल्प, पुराने हिसाब किताब को खत्म करते हैं, बिंदी लगाते हैं। और चौथा संकल्प, मेरी तरफ से दुआएं। और पांचवा, स्पेसिफिक जो शक्ति की उस आत्मा को जरूरत है वो उसको भेजना है। आप शक्तिशाली आत्मा है, हमारा रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है। ये 4-5 संकल्प आप हर रोज रात को कीजिए, हर रोज भेजिए कि आप बहुत अच्छे हैं। और थोड़े ही दिन में आप उनको बदलते हुए देखिएगा, अपने रिश्ते को बदलते हुए देखिएगा। ये 120% होना ही है, ये हमेशा होता है, हर एक के साथ होता है। और याद रखें, मुझ आत्मा के साथ सिर्फ मेरे कर्म जाने वाले हैं। तो कोई कैसा भी कुछ भी करे, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरा कर्म मेरा वर्तमान जीवन भी बनाता है, और मेरा कर्म मेरे साथ आगे भी जाता है।